सिद्धे ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं अन्ताय मच्छरहिया जाय जरामरणन्तपोरढा संसारलयातमहं जीर्णच्छिन्नं जिणा वन्दे। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चोरनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंडर भट्टारक तथा यतिर्षभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चतुर्थ पुस्तक में अभी हम उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति का भुजगार आदि जो देख रहे हैं, उसमें एक जीव की अपेक्षा काल की बात देख रहे थे और उसमें भी मार्गणाओं में बात चल रही थी। हम पृष्ठ संख्या 37 पर आ गए, 37। वेद मार्गणा की बात हम कल पढ़ रहे थे, वहां से शुरू करते फिर दोबारा स्त्री वेदियों की बात देखी थी हमने, दोबारा पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेदियों में मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है, क्योंकि इसमें भी असंगी और संगी दोनों लेंगे हम, तो तीन समय घटित हो गए। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 55 पल्ले है। देवी की अपेक्षा ये हमने देखा था, वहां जाने के पश्चात सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है और फिर बाद में अल्पतर लगातार चलेगा। अवस्थित स्थिति विभक्ति का काल ओग के समान है, एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक 12 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 18 समय है। परंतु अभी ये स्त्री वेदी वाले हैं ना, तो उनके बारे में इनके पुरुष वेद और नपुसक वेद की भुजगार स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट काल 17 समय है, क्योंकि स्त्री वेदी है तो उसमें उत्पन्न होने के पहले, हाँ वो स्त्री वेद का ही बंद कर रहे हैं। तथा अल्पतर और अवस्थित स्थिति विभक्ति का भंग मिथ्यात्व के समान है, यानी वो 12 कषाय और 9 कषाय के बारे में। अनंतानुबंधी चतुष्क का इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, यानी इनमें भी वो विसंयोजना तो होती है स्त्री वेदियों में। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति विभक्तियों का काल ओघ के समान है, जिसे हमने पहले बहुत विस्तार से उसको घटित करके देखा था। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 55 पल्य है। साधिक क्यों लिया, वहां जाने के पहले भी स्त्री वेदी था और फिर जाने के पहले अंतर्मूर्त उसने अल्पतर किया और फिर वहां उत्पन्न हुआ, ऐसा भी ले सकते हैं। मिथ्या दृष्टि, पुरुष वेदी जीवों के पंचेंद्रियों के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है इनके स्त्रीवेद और नपुसक वेदी की भुजगार स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट काल 17 समय है। अब ये पुरुष वेदी है इसलिए अन्य दो वेदों की बात दे। हाँ, देवांगना, हाँ ऊपर गए इसलिए अल्पतर नहीं है। हाँ स्त्री सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की बात चल रही है। हाँ नहीं, उनका ऐसा कहना है कि समय को प्राप्त करेंगे तो नहीं नहीं ऐसा हम ले सकते हैं ना। वहां पर देखो मिथ्यात्व अवस्था में गया है, बात सही है ना। तो यहाँ पर उसने कुछ 28 की सत्ता वाला है, तो 28 की सत्ता वाला ऐसा लेना है कि मिथ्यात्व का उसने घात ज्यादा किया है और अन्य दो की स्थिति ज्यादा है, और वहां जाने के पश्चात उसने सम्यक तो प्राप्त किया है, प्राप्त किया है तो संक्रमण से यानी उसका तो निषेक तो गलेगा उतने, और मिथ्यात्व छोटा था इसलिए संक्रमण के द्वारा भी वो अल्पतरी घटित होगा। पहले जैसे हमने देखा था ना कि अवस्थित के लिए क्या किया था, भुजगार के लिए क्या किया था, तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति इनमें जो वेरिएशन है, तो मिथ्यात्व की कम स्थिति के साथ वहां गया है, इसकी स्थिति ज्यादा है। हाँ देखो हम ऐसा ही देखते ना, जब हम सम्यक्त की अभी देवी की बात भूल जाओ, सम्यक्त की उत्कृष्ट स्थिति किसके होती है, तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंद किया है 28 की सत्ता वाले ने, और फिर उसके बाद एक अंतर्मूर्त चला गया और यानी वो प्रतिभग्न काल, और वहां उत्पन्न हुआ यानी वेदक सम्यक्त प्राप्त किया, तो उसके सम्यक्त की उत्कृष्ट स्थिति हो गई, बराबर है ना भाई। तो सम्यक्त की उत्कृष्ट स्थिति, फिर वो अंतर्मूर्त सम्यक्त भी रहा, फिर मिथ्यात्व में आया है, अब वो मरकर देव में गया है यानी देवी में उत्पन्न हुआ है। अब वहां जाने के पहले उसने मिथ्यात्व का कांडक घात किया, तो मिथ्यात्व का कांडक घात किया तो सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति तो बदली नहीं, और मिथ्यात्व की घट गई थोड़ी ज्यादा, और वहां उत्पन्न होने के पश्चात होता ना मिथ्यात्व में से फिर जब सम्यक्त प्राप्त करता है, अब मिथ्यात्व में जाने के बाद उसने मिथ्यात्व का बंध कम किया, जो सत्ता में था उससे कम बंद किया, क्योंकि यहाँ अंतर्मूर्त मिथ्यात्व की स्थिति यहाँ कितनी हुई, अंतर्मूर्त कम 70 कोड़ा कोड़ी, वेदक सम्यक्त भी रहा, फिर मिथ्यात्व में आया, उसने मिथ्यात्व का स्थिति कम बांधी उसने, और विशुद्धि भी बढ़ी, तो मिथ्यात्व का कांडक किया उसने, तो मिथ्यात्व की स्थिति इससे घट गई है, इससे घट गई, अभी मिथ्यात्व ही है, तो मिथ्यात्व है तब तक उसका सम्यक प्रकृति का एक एक समय गल ही रहा है। अभी ऐसा जीव देव में उत्पन्न हुआ है, मिथ्यात्व ही था, मिथ्यात्व में ही था और देव में गया है, तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति को तो गल ही रहा है एक एक समय से, और मिथ्यात्व के उसने कांडक घात किया उसने मान लेते पहले, तो मिथ्यात्व की स्थिति कम हुई, सम्यक तो मिथ्यात्व उसकी तो एक एक ही गल रही है, और मिथ्यात्व की उसने ज्यादा गलाई है। अब जब सम्यक तो प्राप्त करेगा, हाँ तो मिथ्यात्व में से ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, मिथ्यात्व का कम था ना, मिथ्यात्व का ज्यादा होता तो उसका भुजगार हो जाता। विशेषार्थ है क्या इसमें? हाँ देखो देखो, शुरुआत से देखेंगे। वेद मार्गणा में निम्न बातें ध्यान देने योग्य है। पहली तो यह कि विवक्षित वेद में उस वेद के अतिरिक्त शेष वेदों की गुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल 17 समय होता है। यानी उस जो जिस वेद की बात चल रही है उसके अलावा अन्य दो की बात चल रही है। दूसरी यह कि यद्यपि स्त्रीवेदी आदि का उत्कृष्ट काल 100 पल्ले पृथक्त्व आदि है, फिर भी इनमें मिथ्यात्व आदि की अल्पतर स्थिति का काल उस वेद के उत्कृष्ट काल प्रमाण नहीं है। इनमें से स्त्री वेद में मिथ्यात्वादी 26 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का काल कुछ कम 55 पल्य है। मिथ्यात्वादी 26 लिए हैं, 26 की अभी पहले सुनो, अभी इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शन का जो उत्कृष्ट काल है वही यहाँ उक्त प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। किंतु सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के विषय में स्थिति इससे भिन्न है। बात यह है कि इनकी अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल सम्यक्त्व व मिथ्यात्व के क्रम से प्राप्त होते रहने से होता है, और स्त्री वेदियों में मिथ्यादृष्टि जीव ही उत्पन्न होता है। अतः सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल साधिक 55 पल्य प्राप्त होता है। यानी पहले बताए ना, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व प्राप्त होते रहने से वो होता है। तो पूर्व भव में भी उसने श्रीवेदी था, मिथ्या दृष्टि था, फिर सम्यक तो प्राप्त किया और फिर मिथ्या दृष्टि हुआ, तो उसके अल्पतर चलता रहा। हाँ, देवी ने फिर अंतर्मुहूर्त में उसने समय प्राप्त किया, तो बाद में तो लगातार घटता चला जाएगा। अभी हम 37 प्रश्न पर आते हैं, पुरुष वेदी की बात पढ़ेंगे। पुरुष वेदी जीवों के पंचेंद्रियों के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है, इनके स्त्रीवेद और नपुसक वेदी की भुजगार स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट काल 17 समय है। ये तो उन्होंने बताया था, जो जिस वेद का है उसके अन्य शेष वेदों का 17 समय है। नपुसक वेदियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है। जब हम नपुसक वेदी में मिथ्यात्व देखते तो 4 समय घटित होगा, क्योंकि एकेंद्रियों से आया है। स्त्री वेदी और पुरुष वेदी में तो केवल 3 समय घटित होते हैं, क्योंकि असंगी से संगी में जा सकता है, दोनों में ही स्त्री वेदी पुरुष वेदी होते हैं। परंतु एकेंद्रीय में भी नपुसक वेदी और पंचेंद्रीय में भी है, वहां 4 समय घटित हो गए। एकेंद्रीय में जो हमने देखा था वैसे यहां भी होगा, किंतु इतनी विशेषता है, इनके स्त्रीवेद और पुरुष वेद की भुजगार स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट काल 17 समय है। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है। सातवीं नरक की अपेक्षा लेना यहाँ पर। अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है, वो तो 1 समय ही होता है। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। यह भी नपुसक वेद में से नपुसक वेद में वहां उत्पन्न कराना है, तो यहाँ सम्यक तो था, मिथ्यात्व हुआ, फिर सम्यक तो हुआ, ये जो कुछ है, और फिर बाद में वहां जाने के अंतर्मुहूर्त पश्चात फिर वेदक सम्यक प्राप्त कर लिया। अपगत वेदियों में 24 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल 1 समय। 1 समय कैसे होगा? मरण की अपेक्षा, अपगत वेद होते ही मरण हुआ। और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि अपगत वेद का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। इसी प्रकार अकषाय सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए, वो 11वें गुणस्थान की अपेक्षा बात आती है। क्रोधादि चारों कषाय वाले जीवों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय और नौ नौ कषायों की, भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति का, तथा सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है, क्योंकि ये जो सारी बताए हैं वो तो चारों कषाय वाले हैं। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि कषायों का काल अंतर्मूर्त होता है, अंतर्मूर्त में कषाय पलटती है। विशेषार्थ, अभी हमने स्त्री वेदी की बात पढ़ी थी, अब यहाँ नीचे तीन तीन छः तीन नौ दसवीं लाइन में तथा ओघ में मिला, तथा ओघ में सब प्रकृतियों की जो भुजगार आदि स्थिति कही है वह अधिकतर पुरुष वेद की प्रधानता से घटित होती है। पंचेंद्रियों में भी वह अविकल बन जाती है, क्योंकि पुरुष वेदी पंचेंद्रिय ही होते हैं। सभी पंचेंद्रिय पुरुष वेदी होते ऐसा नहीं है, परंतु पुरुष वेदी है, स्त्री वेदी है, वो तो पंचेंद्रिय होते हैं। अतः यहाँ पुरुष वेद में भुजगार स्थिति आदि का काल पंचेंद्रियों के समान कहा। फिर भी विशेषता बताई थी स्त्री वेद और नपुंसक वेद के बारे में, उसके 17 समय हो गए। तथा नपुंसक वेद में 26 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है, क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शन का जो उत्कृष्ट काल है वही उक्त प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल है। तो सातवें नरक में वहां जाने के पश्चात सम्यक तो प्राप्त किया है, तो आखिर में मिथ्या तो में जाएगा, तो वहां भी अंतर्मूर्त तक कम स्थिति बांध सकता है। हाँ? सम्यक तो प्राप्त करने पर, परंतु अगर उन दो की लेना है अल्पतर तो साधिक 33 कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो तिरियन चाहे मनुष्य ने सम्यक तो प्राप्त किया फिर मिथ्यात्व में गया, वो तो जीव लेना पड़े। यहाँ आएगी बात, तथा सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है, वो स्त्री वेदियों में उसकी बात बताई थी। विशेष खुलासा जिस प्रकार स्त्री वेदियों के कराए हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए, शेष कथन सुगम है। अपगत वेद में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति ही होती है, जो जो सम्यक संबंधी मार्गणाएं हैं वहां सभी अल्पतर ही होती है, तथा इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अतः इसमें सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। इसी प्रकार अकषायी सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के भी घटित कर लेना चाहिए, तथा क्रोधादि चारों कषायों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अतः इनमें सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। क्या कहते हैं? चारों कषायों की स्थिति का चाहिए, अल्पतर स्थिति का लिखा ना उन्होंने। देखो देखो ऊपर जो हमने अपगत वेद में क्या देखा था, इसका इन्हें अपगत वेद का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है ऐसा देखा था, और इसलिए वहां अल्पतर का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। वैसे यहाँ क्या चाहिए था नीचे, के क्रोधादि चारों कषायों की स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अतः इनमें सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त का ऐसा होना चाहिए। ये पहले अल्पतर शब्द डाला है वो वहां नहीं चाहिए था, नीचे से तीसरी लाइन में, तथा क्रोधादि कषायों की स्थिति का चाहिए, अल्पतर वहां शब्द नहीं होना चाहिए। यानी कषाय का अंतर्मूर्त घटित है, इसलिए उसमें अल्पतर का भी अंतर्मूर्त घटित होता है। फिर बाद में कषाय पलट जाती है, मार्गणा बदल जाती है। शेष कथन सुगम है। अब ज्ञान मार्गणा में, मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों में, अब ये मिथ्या दृष्टि है, इसमें डिफरेंस होगा ना, सम्यक्त और मिथ्यात्व के बारे में। दोनों जहां पॉसिबल है वहां कुछ कथन अलग होता है। अब यहाँ क्या देखते हैं, उनमें मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की गुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है। तो मिथ्यात्व में 4 समय हमने देखा था, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में आए, दोनों मिथ्या दृष्टि है। अब 16 कषायों में उन्नीस समय घटित किए थे और 9 कषायों में वेदों के अलावा वो तो बाकी उनमें भी 19 समय होते हैं, और जो जिस वेद से आया उसके अन्य दो वेदों में उसके 17 समय होते हैं। तथा ये भुजगार की बात हुई, अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल साधिक 31 सागर है। यानी जाने के पहले भी उसने घटाई थी और फिर वहां उत्पन्न हुआ है, क्योंकि शुक्ल लेशा जाने के पहले है तो वहां भी उसका अल्पतर होगा और फिर 31 सागर वाले वहां द्रव्यलिंगी मुनि वहां उत्पन्न हुए हैं तो वहां भी उसके अल्पतर है। अंतर्मूर्त वो शुक्ल लेशा रही ना, वहां से शुरू होगा अल्पतर। हाँ, मरण के पूर्व शुक्ल लेशा 1 अंतर्मूर्त तक, और वहां भी वो अल्पतर होगा। बाद में तो सबके अल्पतर ही होता है, क्योंकि वहां ग्रेव हमने नहीं, आनंद से लेकर ऊपर सभी अल्पतर ही भंग होता है। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, किसकी बात चल रही है? मत्य ज्ञानी की बात चल रही है। तो सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त। जघन्य काल अंतर्मूर्त क्यों कहा? हाँ, देखो कोई वेदक समय दृष्टि है, मिथ्यात्व में आया है, तो मिथ्यात्व में आया है तो इमीडिएटली तो सम्यक तो प्राप्त नहीं करता, तो अंतर्मूर्त के बाद वो सम्यक तो प्राप्त करेगा। अंतर्मूर्त तक यानी हमें फिर उसका उत्कृष्ट बंद कराना है, मिथ्यात्व का अधिक से अधिक बंद कराना है, तो अंतर्मूर्त तक सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व तो एक एक समय से घट जाएगा, और बाद में सम्यक्त तो प्राप्त करेगा तो उसका भुजगार हो जाएगा। नहीं समझे? सम्यक दृष्टि था तो जो कोई अंत कोड़ाकोड़ी था, अब मिथ्यात्व में आया है, मिथ्यात्व में आने के पश्चात अंतर्मूर्त, कम से कम अंतर्मूर्त रहेगा तब सम्यक्त तो प्राप्त करेगा, तो उस अंतर्मूर्त काल में मिथ्यात्व का तो बंध यथायोग्य हो रहा है, पर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व एक एक समय से घट रहा है। और उसके पास जब उसने सम्यक तो प्राप्त किया तो मिथ्यात्व अधिक बंधा था, तो उसमें से सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व अधिक हो गया है तो उसका भुजगार हो गया, यानी अल्पतर का। मत्य ज्ञानी में अल्पतर, सम्यक दृष्टि था तो अल्पतर होता था उसका, जब तक सम्यक तो चला रहा था तब तक अल्पतर तो हो रहा था। अपनी मार्गणा कौन सी है? मत्य ज्ञानी की। तो मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त रहा तब तक उसकी सत्ता घटती गई, तो ये अल्पतर हुआ। आप कहेंगे उद्वेलना को क्यों नहीं लिया,
आपका प्रश्न है ना,
क्यों नहीं लिया? उद्वेलना में भी अल्पतर होता चला जाता है, हाँ, तो उसके लिए पल्ले का असंख्यात भाग लगता है। ऐसा नहीं कि सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में आते ही उसके अंतर्मूर्त में उद्वेलना पूरी तो कभी नहीं होगी, उसको तो पल्ले का असंख्यात भाग काल लगेगा ही। तो इसलिए दूसरा रास्ता क्या है, फिर दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त करा लो। तो मत्य ज्ञानी और शुद्धा ज्ञानी का मिनिमम काल अंतर्मूर्त है, तो इसका भी अल्पतर का अंतर्मूर्त होगा। और उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यात विभाग प्रमाण है, 39 पेज पर चल रही बात, क्योंकि उत्कृष्ट काल हो तो मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट काल उद्वेलना की अपेक्षा। देखो जघन्य अंतर्मूर्त कहा, वो तो मिथ्यात्व में रहने का जघन्य काल, मिथ्यात्व का जघन्य काल लिया अंतर्मूर्त। और जो उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यात विभाग कहा, वो उद्वेलना की अपेक्षा कहा। विभंग ज्ञानियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल का भंग दूसरी पृथ्वी के समान है। हाँ, दो समय होगा, अध्याक्षय और कालक्षय, सॉरी अध्याक्षय और संक्लेशय। हाँ, और भुजगार स्थिति कैसी होगी, विभंग ज्ञानियों में भुजगार, देखो विभंग ज्ञानी है और मिथ्या तो की भुजगार कब होगी, जब ज्यादा बंद करने लगेगा, एक समय तक ही लगातार बंद तो वो चलेगा ना बाद में, तो भुजगार एक समय के ही लिए हुआ, बाद में उतना ही रहा तो भी हम उसको अवस्थित कहेंगे, और बाद में कम हो तो उसको हम अल्पतर कहेंगे, तो भुजगार का तो एक ही समय घटित होगा, नहीं समझे? पहले कोई विशिष्ट बंद कर रहा था, अभी विभंग ज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्यात्व का विशिष्ट बंद कर रहा था और उसने अधिक बंद किया, तो उसको क्या कहेंगे हम, भुजगार। अब उतना ही बंद करता रहेगा तो उसको अवस्थित कहलाएगा, कम बंद करेगा तो हम उसको अल्पतर कहेंगे, क्योंकि स्थिति उतनी एक समय से घट जाएगी ना वहां पर। तो भुजगार लगातार एक समय में भुजगार हुआ दूसरे समय में, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, अध्याक्षय से और संक्लेशय से, हाँ वहां तो दो, यानी दो समय घटित हो गए, इसलिए यहाँ इसके हाँ दूसरी पृथ्वी के समान कहा, उत्कृष्ट में आएगा। जघन्य काल एक समय हम घटित कर रहे थे ना, उसकी बात है। और अवस्थित का कम से कम एक समय और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त। तथा अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 31 सागर है। विभंग ज्ञानी में लेना है ना, तो कुछ कम क्यों कहा? हाँ, अपर्याप्त दशा में विभंग ज्ञान नहीं है, तो यहां से मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुआ है, वहां पर अंतर्मूर्त चला गया, विभंग ज्ञान प्राप्त हुआ, और वहां तो लगातार अल्पतर ही होता है, मिथ्या दृष्टि के भी वहां अल्पतर ही भंग है। तो कुछ कम, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ल्यपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। तो जघन्य काल जो एक समय है वो कैसे घटित किया है? हाँ, यानी उद्वेलना करते करते उत्पन्न हुआ है, और उसके कितने निषेक बाकी अभी जो कुछ विभंग ज्ञान उत्पन्न होने के लिए एक समय वाला नहीं आया है। हाँ, जिस समय विभंग ज्ञान उत्पन्न होगा उस समय उसकी सत्ता है, लास्ट निषेक, और अनेक समय में उसकी सत्ता नहीं। उद्वेलना कभी भी हो सकती है, तो विभंग ज्ञान उत्पन्न होने के दूसरे समय में उसकी उद्वेलना कंप्लीट हुई तो एक समय घटित होगा। और सम्यक तो सम्यक मिथ्या तो की अल्पतर स्थिति व्यक्ति का, क्योंकि विभंग ज्ञानी है ना, यहाँ का ग्रेवेक का सम्यक दृष्टि अगर कहते हम, ग्रेवेक में सम्यक दृष्टि भी उत्पन्न होते कि नहीं होते, तो वहां सम्यक का अल्पतर कितना काल होगा? हाँ, पूरे 31 सागर हो गए, क्योंकि वो तो लगातार उसके एक एक समय घटता चला जाएगा। सम्यक दृष्टि है तो उसके सम्यक तो सम्यक मिथ्या तो बना रहेगा। हाँ, नहीं, हमने यहाँ की बात ग्रेवे की बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट तो हम 33 सागर में लेते हैं। ऊपर कहाँ पर? वेदक सम्य दृष्टि उत्पन्न हुआ उसकी बात चल रही है, और यहाँ हम बात अलग कर रहे हैं। वे हमने विभंग ज्ञानियों में देखा और उस 31 सागर देखा, उसमें कुछ कम देखा। अब यहाँ जो उद्वेलना लेनी है हमको, तो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण ही होगी। उसके अगेंस्ट यहाँ का जो सम्यक दृष्टि लिया ग्रेवेक का, तो उसके सम्यक की अल्पतर कितने काल तक चलेगी? तो सम्यक के साथ ही उत्पन्न हुआ है और बाद में लगातार अल्पतर चलेगा उसका पूरी लाइफ टाइम में। उत्पन्न हुआ उस समय, यानी वो पहले से उद्वेलना करते आया था, यानी उसके अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक बाकी थे। अब विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ तब उसका लास्ट निषेक है, और बाद में वो उद्वेलना पूरी हुई तब हम उसको ले सकते हैं। उत्कृष्ट काल तो समझ में आते हैं ना, उद्वेलना के लिए जितना काल लगता है उतना लिया। आविनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9-9 कषायों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान है वो अंतर्मूर्त के लिए सम्यक तो बना रहे, तो जघन्य काल अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। अभिनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी में, हाँ वो तो शुद्ध उपशम सम्यक तो का काल भी ले लो उसमें। हाँ, पर पूरा करेगा तो क्षय करेगा, तो पूरा करने के पहले वाला अंतर्मूत लेना, परंतु उपशम सम्यक तो का काल उसमें जोड़ देना है, तो उपशम सम्यक का अंतर्मूर्त बड़ा है लास्ट में जो हम घटाने वाले हैं ना, क्योंकि पूरे 66 सागर वेदक में रहते तो क्षायिक हो जाता है, तो उसके एक अंतर्मूर्त पहले हमें मिथ्यात्व में चले जाएंगे या मिश्र में, उससे हमें कोई लेना नहीं। मिश्र में भी गया तो भी अभिनिबोधिक ज्ञान तो रहेगा नहीं, तीसरे गुणस्थान में गया तो भी वो सम्यक ज्ञानी तो है ही नहीं है। अपने क्राइटेरिया क्या है? अभी अभिनिबोधिक ज्ञानी होना चाहिए। जब ज्ञान की अपेक्षा नहीं लगाते हैं ऐसे ही बताएंगे तो हमने तो हाँ 132 वो और फिर वो मिथ्यात्व के साथ वो 31 सागर भी उसमें मिलाए थे, उसकी बात यहाँ नहीं लेना। ये सम्यक दृष्टि रहते हुए की बात है, तो पहले उपशम सम्यक तो हुआ तो अभिनिबोधिक ज्ञान तो चालू हो गया, तो उपशम सम्यक का अंतर्मूर्त उसमें ऐड करना, किसमें? 66 सागर में। और लास्ट वाला एक अंतर्मुहूर्त उसको जल्दी लाना है ना, हाँ तो कम करना, फिर भी वो साधक ही रहेगा क्योंकि उपशम का काल बड़ा है और लास्ट में मिथ्यात्व में आने का काल छोटा है। नहीं समझ? वही तो, उसी की तो बात चल रही है। देखो देखो ये 66 सागर पूरे होते हैं तो वो क्षायिक होगा, ख्याल है ना? इसलिए यहाँ का एक अंतर्मुहूर्त हमको घटाना है, पहले मिथ्यात्व में लाना है। परंतु उसने पहले उपशम सम्यक तो भी तो प्राप्त किया था, इसको ऐड करना है। वेदक का 66 सागर है, अभिनिबोधिक चाहिए। उपशम सम्यक तो होते ही वो अभिनिबोधिक हो गया तो उसका तो अल्पतर चालू ही हो गया है, मिथ्यात्व और सभी बाकी कषायों के अल्पतर तो चालू हो गया। अब यहाँ वेदक के साथ रहा 66 सागर के थोड़ा कम, तो जितना कम रहा उससे उपशम सम्यक्त्व का काल बड़ा है, इसलिए यहाँ से घटाओ और यहाँ ये बढ़ा दो तो भी ये साधिक ही होगा। किंतु इतनी विशेषता है तीसरी लाइन कि अनंतानुबंधी की अपेक्षा कुछ कम 66 सागर है। क्या कहते हैं? देखो यहाँ जो 66 सागर पूरे अगर ले रहता है तो जो क्षायिक हो जाता है, ऐसा लिया ना हमने। हाँ, तो इसके लिए क्या लिया? अनंतानुबंधी के लिए उपशम समझते हैं। यहाँ लास्ट में हमको अल्पतर अधिक से अधिक लंबा करना है। देख क्या लिखते हैं, अनंतानुबंधी की अपेक्षा उत्कृष्ट काल घटित करना है। देखो यहाँ मिथ्यात्व में ले जाना है ना हमको, तो यहाँ अनंतानुबंधी को भी संयोजना करा दो यहाँ पर। विसंयोजना हो गई है, अच्छा, परंतु विसंयोजना हो गई तो उत्कृष्ट काल कैसे घटित करेंगे? हमें क्या लेना है? अनंतानुबंधी की अपेक्षा हमें उत्कृष्ट काल घटित करना है। तो यहाँ उपशम सम्यक तो पहले प्राप्त हुआ तो यहाँ से अनंतानुबंधी का अल्पतर चालू हो गया। हाँ, तो अंत में अगर हमें वो बढ़ाना था ना, तो कुछ कम 66 सागर है। कुछ कम क्यों कहा? यहाँ तो बढ़ाया था। हाँ, तो हमें लंबाना है तो क्षायिक करने के पहले क्या करता है? विसंयोजना करता है, तो विसंयोजना की और बाद में मिथ्यात्व में आया। के उत्कृष्ट काल घटित करना था ना हमको। विशेषण देखो, देखो 40 पृष्ठ पर उसी को पहले पढ़ लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी लाइन में मिला ना, अनंतानुबंधी चतुष्क इसका अपवाद है। बात यह कि वेदक सम्यक्त्व के साथ मिला, वेदक सम्यक्त्व के साथ अनंतानुबंधी का सत्व कुछ कम 66 सागर तक ही पाया जाता है, ये तो रूल है। इसलिए इसकी अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर कहा। वेदक सम्यक्त्व के साथ अनंत अनुबंधी लिया, पर उपशम के साथ भी उसके तो अल्पतर तो होगा उसका, क्योंकि हाँ यानी उसका सत्व इतने काल तक रहा तो उसको उसके पहले ही उसका, जैसे यहाँ हमने मिथ्यात्व में लाया था, हाँ तो उसके पहले उसकी विसंजना हो जाएगी इतने काल तक वो, हाँ वो काल बढ़ा है इससे, यानी इतना काल होने के बाद इसकी विसंजना हो ही जाएगी, हाँ बाद में वो मिथ्यात्व में आ सकता है, उसका उत्कृष्ट रहने का काल जो है। कृत्य कृत्य वेदक हो जाएगा तो भी हमें काल देखना है, उत्कृष्ट काल कितना रहता है उसको देखना है, जो क्षायिक होने जा रहा है तो क्षायिक हो जाने वाले क्या करेगा, अंतर्मूर्त पहले पहले विसंयोजना करेगा, फिर अंतर्मूर्त जाएगा, फिर मिथ्यात्व का क्षय करेगा, फिर अंतर्मूर्त जाएगा, फिर सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करेगा, फिर अंतर्मूर्त विश्राम लेगा, फिर सम्यक प्रकृति का क्षय करेगा। तो ये सब होने के लिए जितने अंतर्मूर्त आवश्यक है उतने घटाने चाहिए, हाँ यहाँ तो अल्पतर चालू ही हो गया, परंतु अनंतानुबंधी का सत्व इसके साथ कम टाइम तक रहता है, ये बात लेना है यहाँ पर। पहले किसको लिया था हमने, मिथ्यात्व की सत्ता वाले को लिया था, मिथ्यात्व की सत्ता अधिक टाइम तक रहेगी, मिथ्यात्व की सत्ता कैसे गठित करना है मैं बताती फिर से दोबारा। उपशम सम्यक तो प्राप्त किया, मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त गया, मिथ्यात्व का अल्पतर चालू हो गया, अब यहाँ हमें पूरा 66 सागर वो मिथ्यात्व में लाओ मत, उसको क्षायिक करा दो। तो क्षायिक करने के लिए क्या क्या होगा, एक लास्ट वाला ये जो है कृतकृत्य वेदक का, फिर उसके वो विश्रांति और वो सब लेना उसका सम्यक मिथ्यात्व का, और उसके पहले यहाँ मिथ्यात्व का क्षय, और उसके पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना। तो मिथ्यात्व की अल्पतर कितने काल तक चलेगी, तो यहां से लेकर अब इसका क्षय ही करा दो ना, मिथ्यात्व में लाते ही क्यों, जब तक मिथ्यात्व का क्षय नहीं होता है तब तक उसका अल्पतर ही कहलाएगा। तो मिथ्यात्व के क्षय के लिए लंबा काल और आगे चलकर मिथ्यात्व का क्षय होगा, और अनंतानुबंधी का उसके पहले विसंयोजना होगी। इसलिए अनंतानुबंधी के लिए 66 सागर से कम कहा और मिथ्यात्व के लिए कुछ ज्यादा कहा, यानी विसंयोजना के पश्चात वाला काल यहाँ बढ़ा लेना है। ये तो हमने विशेषार्थ में पढ़ा, फिर आते मूल पेज पर। अभिनिबोधिक ज्ञानी में हम अनंतानुबंधी की विशेषता देख रहे थे, तीसरी लाइन से शुरू किया था, अब चौथी लाइन में आते हैं। यानी अभिनिबोधिक ज्ञानी में ही सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त तक सम्यक दृष्टि रहा, और उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर है। ये साधिक में उपशम प्लस वेदक लेना, यानी जितने मिथ्यात्व की देखी उससे भी थोड़ा ज्यादा ही होगा ना इसका, क्योंकि मिथ्यात्व का क्षय होने तक तो ये इसकी सत्ता थी, तो उतना एक अंतर्मूर्त और बढ़ा दो। यहाँ भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य विभक्तियां नहीं है, किसी की भी नहीं है, क्योंकि ये सम्यक तो संबंधी मार्गणा है। मनक परे ज्ञानियों में अभिनिबोधिक श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी की बात हुई, मनक परे ज्ञानियों में 28 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त। क्यों अंतर्मूर्त, हाँ क्षपक श्रेणी चढ़ के क्षय कर दिया, या मन परिज्ञानी हो गया और फार्बे मिथ्या तो समझ जाते उसकी, उसका क्षय क्षयिक समय दृष्टि हुआ और फिर श्रेणी चढ़ा। हाँ मरण भी हो सकता है। और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण है, क्योंकि 8 साल के बाद संयम धारण किया वगैरह वगैरह, मन परिज्ञान उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयत जीवों के जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवों में 24 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। ये बर्ताव कैसे होगा? हाँ विनोद भाई आप कहेंगे। उपशम श्रेणी उत्तर के 90 में आया है और एक समय में मर गया। असंयतों में ओग के समान भंग है। ये संयम मार्गणा में असंयत की बात चल रही है, किंतु इतनी विशेषता है इनमें अल्पतर स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। हाँ उत्कृष्ट काल कहाँ बढ़ाएंगे हम उसको, फिर भी वो पांचवे गुण कुछ कम पूर्व कोटि लिया ना, कुछ कम का प्रमाण वेरिएबल है, परंतु कुछ कम ये कथन तो वहां भी होगा। अब असंयतों में क्या विशेषता है? अल्पतर स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। ये कैसे लेना? सर्वार सिद्धि से आने वाला लेना, ये जाने वाला तो संयम ही होगा, तो वहां असंयत चौथा गुणस्थान रहा और यहां उत्पन्न हुआ तो भी चौथा गुणस्थान, तो लंबे काल तक चौथे में रखो उसको, फिर बाद में संयम ही बना दो। तथा सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। हाँ बोलो ये सम्यक। हाँ असंयत में एक कैसे होगा? हाँ कैसे? हाँ तो पहले संयमी थे ऐसा लेना, मुनिराज है या संयमा संयम वाला ले लो, और क्षायिक कर रहे हैं, क्षायिक कौन कर रहा है? या तो संयता संयत या संयत, और उसके कृतकृत्य वेद यानी तब मरण हुआ और वहां पहले ही समय में उसका चौथा गुणस्थान हो गया और एक समय के लिए उसके कृतकृत्य वेदक का अंतिम समय है और पश्चात वो क्षायिक हो गया, तो कृतकृत्य वेदक के भी संयमी है वो, असंयत में आया है ना मरण करके, ऐसा जीव लेना। विशेषण 90 ग्रेवेक में मिथ्यात्व आदि की अल्पतर स्थिति होती है। ये पहले से यहां उन मत्य ज्ञानी से ये बात बता रहे हैं। अब यदि वहां कोई मिथ्या दृष्टि जी उत्पन्न हुआ तो उसके आदि और अंत में भी अल्पतर स्थिति पाई जाती है, अतः मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों के मिथ्यात्व आदि 26 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल साधिक 31 सागर कहा। आदि और अंत में ने देखो ये शुक्ल लेशा वाला है ना, यहाँ पर तो जाने के पहले शुक्ल लेशा में है, परंतु वहां पर अगर मिथ्यात्व में आते तो लेशा तो बदल जाती है, परंतु मिथ्यात्व का इमीडिएटली उसका उत्कृष्ट बंध तो नहीं होगा, जितना है उससे भी कम बंध होगा, तो ये और थोड़ा ज्यादा घटित हो सकता है, क्योंकि आएगा तो औदारिक मिश्र में आता है, तो वहां भी हो सकता है जितना सत्ता में उससे भी कम बंद हुआ उसका, वहां तो पर्याप्त था, यहाँ तो अपर्याप्त हो गया है। तथा विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें उक्त प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल कुछ कम 31 सागर कहा। तथा मिथ्या दृष्टि के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक ही पाई जाती है, यानी उद्वेलना पूरी होती है। अतः उक्त तीनों अज्ञानों में इन दो प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण कहा। अभिनिबोध ज्ञान आदि सम्यक ज्ञानों में केवल अल्पतर स्थिति ही पाई जाती है, किंतु महपर्य ज्ञान को छोड़कर इनका जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल सादिक 66 सागर है। इसलिए इनमें सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल सादिक 66 सागर कहा। किंतु अनंतानुबंधी चतुष्क इसका अपवाद है। बात यह है कि वेदक सम्यक्त्व के साथ अनंतानुबंधी का सत्व कुछ कम 66 सागर तक ही पाया जाता है, इसलिए इसकी अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर कहा। तथा मनपर्य ज्ञान का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है, मनपर्य ज्ञान का ही वो अल्प काल बता दिया। अतः इसमें सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण कहा। मनपर्य ज्ञान के समान संयत आदि मार्गणाओं में भी जानना चाहिए, क्योंकि इनका जघन्य और उत्कृष्ट काल मनपर्य ज्ञान के समान है। इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेदोपस्थापना का चाहिए। जघन्य काल एक समय भी है जो कि उपशांत मोह से च्युत हुए जीव के ही संभव है, यानी मरण की अपेक्षा। क्योंकि ऐसा जीव एक लिखा है आगे, ऐसा जीव एक समय तक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में रहा और मर कर यदि देह हो जाता है तो उसके सामायिक और छेदोपस्थापना संयम का जघन्य काल एक समय पाया जाता है, क्योंकि बाद में तो वह असंयत हो जाता है, सामायिक छेदोपस्थापना में से वो असंयमी हो जाएगा। पर यहाँ 24 प्रकृतियों की सत्ता ही संभव है, यानी ऐसा जब ये सामायिक छेदोपस्थापना के लिए एक समय हुआ तो 24 की सत्ता है। अतः 24 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल एक समय कहा। असंयत मार्गणा में और सब काल तो ओघ के समान बन जाता है, किंतु सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल सादिक 33 सागर तथा सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। बात यह है कि अविरत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागर है, यानी 33 सागर वाला देव यहाँ उत्पन्न हुआ है मनुष्य में। हाँ, तो एक पूर्व कोटि के अंत में वो जाके संयम धारण करेगा, तो कुछ कम लिखा हुआ। अतः असंयम में सब प्रकृतियों यानी असंयत अविरत समय दृष्टि चौथा गुणस्थान है, ऊपर का देव लेना 33 सागर वाला, वहां से लाना नीचे। उसमें भी हमने ये देखा था 33 सागर में एक समय कम वाला देव लाना तो उसको असंयत का काल बढ़ जाएगा नीचे, ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा याद है। पूरे 33 सागर वाला जल्दी संयमी होता होगा ऐसा लगता है। तथा यहाँ कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा सम्यक्त्व की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। ये तो हमने देखा था कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा। अब दर्शन मार्गना की बात चले। चक्षु दर्शन वाले जीवों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की गुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति का तथा अनंत अनुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है। देखो यहाँ चार समय घटित कराए हैं मिथ्यात्व के, कैसे करेंगे? हाँ, चतुरिंद्रिय में से वो उत्पन्न कराना है संगी में। तो यहाँ पहले दो समय अल्पतर और सॉरी अध्याक्षय और संकलेक्षय से, फिर असंगी जैसा भंग होगा विग्रह में और फिर संगी जैसा बंद हो जाएगा। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 163 सागर है। जैसे हमने पहले देखा था 163 सागर कैसे 66-66, 132 बीच में वो सम्यक मिथ्यात्व में लाया है और फिर बाद में वो 31 सागर वाला, भले मिथ्या दृष्टि है फिर भी उसका अल्पतर ही भंग होगा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति भक्तियों का काल ओग के समान है तथा अल्पतर स्थिति भक्ति का जघन्य काल एक समय। अल्पतर में कैसे घटित करेंगे? उद्वेलना कर रहा है और फिर नीचे एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तीन इंद्रिय में से चतुरिंद्रिय या पंचेंद्रिय में आया है और एक समय रहकर उद्वेलना पूरी हुई। अपने मार्गना तो चक्षु दर्शन वाली है, चक्षु दर्शन ही हुआ और एक समय में उद्वेलना पूरी हो गई। और उत्कृष्ट काल साधिक 132 सागर हैं। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की बात है ना, तो साधिक 132 में पल्ले के असंख्यात्व भाग अधिक मिथ्यात्व की हमको लेना था तो पूरे 31 सागर हमने उसमें मिला दिए थे, 163 सागर हुए थे इतने, क्योंकि वहां मिथ्यात्व में उसको लंबाया था। मिथ्यात्व का भी उसको अल्पतर होता है, ग्रवेकों में मिथ्यात्व को भी अल्पतर होता चला जाता है, परंतु मिथ्या दृष्टि के इतने काल तक तो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व रहेगा नहीं, तो उसकी तो उद्वेलना पूरी हो जाएगी। इसलिए साधिक में पल्ले के असंख्यात्व भाग लेना। अवधि दर्शन वाले जीवों का भंग करना अवधि ज्ञानी जीवों के समान है। विशेषार्थ, चक्षु दर्शन मार्गना का काल यद्यपि 2000 सागर है, पर इसमें अल्पतर स्थिति का काल इतना नहीं प्राप्त होता। इसलिए यह कहा है कि चक्षु दर्शन में 26 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 163 सागर है। ये समय दृष्टि रहा तो ही अल्पतर होगा, नहीं तो चक्षु दर्शन होते हुए भी कभी ज्यादा कभी कम ऐसा चेंज होता रहेगा। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल साधिक 132 सागर है, यह ओग के समान घटित कर लेना चाहिए। किंतु इन दो प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति के जघन्य काल में कुछ विशेषता है। बात यह कि उद्वेलना की अपेक्षा इनकी अल्पतर स्थिति का जघन्य काल एक समय भी पाया जाता है, अतः अल्पतर स्थिति का जघन्य काल एक समय कहा है? शेष कथन सुगम है। यानी उस मार्गणा में आया उद्वेलना करते करते, तथा इसके आगे अन्य मार्गणाओं में जो काल का निर्देश किया है उसका अनुगम पूर्व कथन से हो जाता है, इसलिए पृथक खुलासा नहीं किया, यानी विशेषार्थ में उसको अलग से नहीं बताया, बाकी वहां तो बता चुके। अब लेशा मार्गणा, कृष्ण नील और कापोत लेशा वाले जीवों में मिथ्यात्व की भुजगार और अवस्थित स्थिति भक्तियों का काल ओघ के समान है, क्योंकि एक इंद्रियों में भी ये तीन लेशा है और वहां से पंचेंद्रियों में आया है। हाँ। अल्पतर स्थिति भक्ति का जघन्य काल एक समय, क्योंकि उस लेशा में आया है तो वहां पर जघन्य काल घटित हो सकता है, और उत्कृष्ट काल क्रम से कुछ कम 33, ये सातवें नरक में, कुछ कम 17 पांचवे, और कुछ कम 7 सागर प्रमाण है। हाँ? वहां पर वो सम्यक तो प्राप्त करता है वहां जाकर, कुछ कम में लिया ना। हाँ, पर कुछ कम 33 के लिए तो कुछ कम, और वहां 17 के लिए भी, वहां जाने के पश्चात उत्पन्न होने के पश्चात वहां समय प्राप्त किया, वहां से आने पर उसकी लेशा छोटा काल है, लेशा का काल छोटा है, सम्यक तो उत्पन्न होने का काल बड़ा है, और एक एक लेशा का काल, क्योंकि वहां तो लेशा वही रही नरकों में, वहां से यहाँ मनुष्य में आया है सम्यक तो के साथ, तो उसी लेशा में अल्पतर तो रहेगा, परंतु वो जो अंतर्मूर्त है वो छोटा है, वो कृष्ण से नील, नील से ऐसा होता है, क्योंकि कृष्ण में तो आएगा नहीं सम्यक तो के साथ, है ना, सातवें नरक से तो नहीं आता है, फिर भी छठे में तो कृष्ण का अंश कुछ होगा, वो उत्कृष्ट वाला नीचे का नहीं होगा, इसलिए वहां उसको भी लिया कुछ कम में, और ये कपोतलेशा का मैक्सिमम काल लिया है सात सागर, 16 कषाय, ये मिथ्या तो हाँ, उत्कृष्ट काल लिया सात सागर, उत्कृष्ट काल लिया, उसमें से कुछ कम लिया, क्योंकि वहां जाने पर समय तो प्राप्त किया है, पहले नरक का नहीं लिया उन्होंने, हाँ तीसरे नरक तक, हाँ वहां भी जघन्य अंश है ना कपोत का, सोलह कषाय और नौ नौ कषाय की भुजगार और अवस्थित स्थिति भक्ति का काल ओघ के समान है, जैसे हमने केंद्रीय में से पंचेंद्रीय में उत्पन्न होता है वगैरह वगैरह देखा था, 17 समय 19 समय जो, हाँ पहले नरक की बात नहीं लेनी यहाँ पर, असंगी में से हमने संगी में, पहले नरक में भी कितने तीन समय घटित हुए थे, यहाँ हम तिरियंच में भी घटित कर सकते हैं ना, तिरियंच में घटित करेंगे तो चार समय होते हैं, तो उसको लेना, 16 कषायों की बात है, तो 16 कषायों की बात लेना है, हाँ 19 समय होंगे, यहाँ नरक की अपेक्षा नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है, हाँ। तथा अल्पतर स्थिति विभक्ति का भंग मिथ्यात्व के समान है, जैसे अभी हमने देखा कि सम्यक्त्व के साथ रहने का काल लेना, अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, सम्यक्त्व और सम्य, देखो ये नरकों में भी उसके विसंयोजना होती है, मनुष्य और तिरियंचों में तो अशुभ लेशा में विसंयोजना नहीं होगी, नारकियों में हो सकती है, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है, यानी भुजगार तो एक समय में घटित होगा, अवस्थित भी एक समय वाला जो है मिथ्यात्व में से सम्यक प्राप्त करने पर, अवक्तव्य भी एक समय वाला, अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय, अल्पतर का भी जघन्य काल एक समय हमने सम्यक प्राप्ति के समय देखा था। उद्वेलना की अपेक्षा हो जाएगी, बराबर उद्वेलना उस लेच्छा में आने पर उद्वेलना की। और उत्कृष्ट काल क्रम से कुछ कम 33 जैसे ऊपर देखा था, कुछ कम 17 और कुछ कम 7 सागर है। नहीं नहीं नहीं, किसी लेश उसके उद्वेलना का प्रोसेस चल रहा है। अभी नारकी को भूल जाओ, यहाँ पर कहीं पर ले जाओ उसको, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, तो उस लेशा में आते ही उद्वेलना एक समय में पूरी हो गई। पीत लेशा वाले जीवों के सौधर्म के समान भंग है, पद्म लेशा वालों के सहस्रार के समान भंग है, और शुक्ल लेशा वालों के आनंद कल्प के समान भंग है। किंतु इतनी विशेषता है कि शुक्ल लेशा में अल्पतर स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। अब आगे अभव्यों में 26 प्रकृतियों का भंग मत्य ज्ञानियों के समान है, यानी मिथ्यात्व का भुजगार होगा 4 समय वाला, अनंतानु ये सॉरी 16 कषाय और 9 कषायों की बात हमने 17 समय 19 समय होगी घटित होगी। सम्यक दृष्टियों के ये सम्यक तो मार्गना में अभिनिबोधिक ज्ञानियों के समान भंग है। क्षायिक सम्यक दृष्टियों में 21 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। अंतर्मूर्त क्षायिक होने पर अंतर्मूर्त में, हाँ वो उसका यानी 21 प्रकृतियों का क्षय कर दिया ना, और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर कैसे होगा? क्षायिक समय दृष्टि है तो, हाँ तो यहाँ क्षायिक किया उसने, तो क्षायिक करने के पहले देवायु बांधी, क्योंकि बाद में तो देवायु बांधेगा नहीं, बाद में हाँ क्षायिक है बंधेगी, क्योंकि नीचे के गुणस्थानों में तो बन सकती है ना, देव की तो बांधने में कोई हर्जा नहीं है। हाँ अब नरक की बात मुझे याद आई, वंतर की भी जरूरत नहीं, वहां जो कोई उसने बांधी है क्षायिक समय दृष्टि होकर और फिर यहाँ आया है, यानी दोनों ही पूर्व कोटि में से कुछ लेना भाग उसमें जब तक क्षय नहीं करता है। कौन सा वाला? अधिक से अधिक काल लेना, तो क्षायिक होने के पश्चात वाला लेना। हाँ 33 सागर में से फिर आया है यहाँ पर, तो साधिक में ले लेना। वेदक सम्यक दृष्टियों में मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग अवधि ज्ञानियों के समान है, किंतु इतनी विशेषता है अल्पतर स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर है। वहाँ अभिनिबोधिक ज्ञानी में तो कुछ साधिक लिया था, हाँ तो उपशम सम्यक्त्व को भी उस काल में मिलाया था। सम्यक्त्व को अलग रखा, सम्यक्त्व 12 कषाय और 9 कषायों की अल्पतर स्थिति भक्ति का जगन्य काल अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। वेदक सम्यक दृष्टि है ना, तो वेदक सम्यक दृष्टि हुआ है, कृतकृत्य वेदक भी वेदक है। देखो क्या है, कृतकृत यानी वेदक सम्यक दृष्टि है, तो वेदक सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व की भी सत्ता है, सम्यक्त्व की भी है, सम्यक मिथ्यात्व की भी है। तो उनके अल्पतर लेना है यहाँ पर, तो अल्पतर अगर लेना है मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर लेना है तो अधिक से अधिक कितने काल तक होगा? वेदक सम्यक में अल्पतर तो कुछ कम 66 साल, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व में सम्यक्त्व के लिए वो उत्कृष्ट काल और जघन्य काल। हाँ वही अंतर्मूर्त क्यों? हाँ वही तो अंतर्मूर्त में क्षायिक कर दिया। और उत्कृष्ट काल 66 सागर है, वहां कुछ कम 66 लिया था। ऐसा भी ले सकते ना, अंतर्मूर्त तक वेदक समय दृष्टि रहा तो मार्गणा अलग है। देखो देखो वेदक सम्यक्त्व में मिनिमम रहने का काल कितना है अंतर्मूर्त, तो वहां तो मिथ्यात्व के बारे में, सम्यक्त्व के बारे में, सम्यक मिथ्यात्व के बारे में तो अंतर्मूर्त घटित होता है। अब बात रही उत्कृष्ट काल की, तो उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के लिए कुछ कम 66, क्यों? वो लास्ट में क्षायिक होने का काल उसमें से घटा दिया, परंतु सम्यक प्रकृति तो अंतिम समय तक रहती है। वेदक काल का जो पूरा 66 सागर है तब तक तो सम्यक प्रकृति का उदय चल ही रहा है, इसलिए वहां पूरे एक्स्ट्रा काल में पूरा 66 सागर लिया और ऊपर कुछ कम 66 सागर लिया था। सासाधन सम्य दृष्टियों में नीचे से दूसरी तीसरी लाइन 41 पेज में, सासाधन सम्यक दृष्टियों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति भक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 आवली है। ये सासाधन का जघन्य और उत्कृष्ट काल लिया। हाँ सभी प्रकृतियों का अल्पतर ही होता है, बंद होगा तो भी कम होगा। मिथ्या दृष्टियों के मत्य ज्ञानियों के समान भंग है। संगी जीवों के पंचेंद्रियों के समान भंग है, इसी प्रकार आहारक जीवों के जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि संगियों में, अभी संगियों में घटित करना है तो ये मिथ्यात्व के 4 समय हो गए कि नहीं? बीजाकार वो तो 4 तो हमने एक इंद्रिय में से पंचेंद्रिय में लाया था संगी में, हाँ, और फिर असंगी में से संगी में आया तो 3 समय घटित हुए थे। अरे अब यहाँ तो संगी ही है तो उसमें मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व की अपेक्षा 2 समय, एक अध्यक्ष और एक संक्लिष्ट है, और शेष की अपेक्षा 17 समय है। असंगियों में मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय। असंगी में मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय। अभी असंगी एकेंद्रिय भी असंगी है, तो एक समय के लिए वो जघन्य कर दिया उसने, जैसे उत्कृष्ट एक समय के लिए बनता है तो जघन्य भी होता है ना।
और उत्कृष्ट काल पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है।
हमने देखा था कि संगी में से जो एक इंद्रिय में वगैरह उत्पन्न होता है तो पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल में उसकी स्थिति उसके योग्य हो जाती है। हाँ, हत समुत्पत्ति
तथा शेष भंग औदारिक मिश्र का योगियों के समान है।
यानी असंगियों में भुजगार मिथ्यात्व का घटित करेंगे, असंगी न तो एक इंद्रिय में से असंगी में उत्पन्न कराओ। चार समय तो नहीं होगे, परंतु विग्रह का एक और संकलेश है, अध्याक्ष है, और वो असंगी के योग्य बंध होगा। चार समय तो संगी में होते हैं। मिश्र काल में भी है तो असंगी के योग्य होगा ना, वहां पर भी बंध। विग्रह में भी असंगी के योग्य और मिश्र में भी असंगी के योग्य। देखो कौन से कहां पर संगी के, हाँ ऊपर जो संगी में लिखा है ना, देखो जब हम असंगी में से संगी में उत्पन्न करते, जैसे पहले नरक में देखा था, तो विग्रह में असंगी के जैसा भंग, फिर औदारिक मिश्र में आया है, यानी वहां एक अध्याक्ष और एक कालक्षय से घटित किए थे, अध्याक्ष और संकलेश। असंग दो विग्रह वाला लिया था, पहले विग्रह में असंगी के योग्य, फिर असंगी के योग्य परंतु अध्याक्षय हो गया था, और फिर औदारिक मिश्र में संगी के योग्य बंध कराया था। पहले नरक में जो हमने देखा था, और यहाँ तो, हाँ यहाँ तो असंगी का असंगी में रखना है, संगी का संगी में रखना है, अपनी मार्गणा ही संगी की है। असंगी में चार समय नहीं होगे, तीन समय होंगे। औदारिक मिश्र में कितने, तीन समय है ना, पेज नंबर 36। हाँ देखो सेकंड लाइन में मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय औदारिक मिश्र में, और उत्कृष्ट काल तीन समय है। वो तीन समय भी औदारिक मिश्र ने अपर्याप्त में से अपर्याप्त में उत्पन्न कराया है, परंतु यहाँ तो संगी की बात है ना। इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ। अभी अंतरानुगम, अब कहेंगे काल आसंत यानी एक बार भुजगार होने के बाद पश्चात दोबारा भुजगार होने के लिए बीच में कितना अंतर चला जाएगा, उसको अंतर कहेंगे। काल तो हमने कंटिन्यूअस चार समय देखे थे। अंतरम, आगे अंतरानुगम का अधिकार है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि अधिकार की संभाल करना इसका फल है। कौन सा अधिकार शुरू हुआ है उसका कथन करते हैं। मिच्छत्तस्य भुजगार अवट्ठित कम्मन्स्यस्य अंतरम जहन्नेन एक समो। मिथ्यात्व की भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीव का जघन्य अंतरकाल एक समय है, क्योंकि जो कोई जीव भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्तियों को एक समय तक करके और दूसरे समय में अल्पतर स्थिति विभक्ति करके, यदि तीसरे समय में पुनः भुजगार और अवस्थित विभक्तियां करते हैं, तो उनके भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का
केवल एक समय अंतर पाया जाता है। यानी क्या, उसने पहले भुजगार किया, बाद में अल्प बंद किया, अल्पतर किया, और एक समय के लिए हो सकता है, और फिर ज्यादा किया या उतना ही किया, तो हम कहेंगे ना अवस्थित। दोनों का ही एक समय अंतर घटित होगा। लगातार अंतर मुहूर्त तक तो मैक्सिमम है, कम से कम एक समय तक। हमने देखा ना उत्कृष्ट बंध भी कम से कम एक समय तक, वैसे जघन्य भी कम से कम एक समय तक हो सकता है। उक्कसेन तेवट्ठी सागरोम सदम साधेयम्। उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 163 सागर है। देखो अभी यहां ऐसा हमने देखा था, अल्पतर का काल वो भुजगार का अंतर कहलाएगा। हमने देखा साधिक 163 सागर हमने घटित करके देखा था। हाँ, अल्पतर था। उसका खुलासा इस प्रकार है, जिन्होंने तिर्यंच और मनुष्यों में उत्पन्न होकर भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्ति का प्रारंभ किया, पहले भुजगार या अवस्थित उसको कराना चाहिए ना, क्योंकि उसका अंतर घटित करना है बाद में। पुनः वहीं पर अंतर्मूर्त काल तक अल्पतर स्थिति विभक्ति से उन्हें अंतरित किया। भुजगार के बाद अल्पतर किया और उसके बाद पुनः वे तीन पल्ले की आयु वाले जीवों में उत्पन्न होकर और 163 काल तक परिभ्रमण करके मनुष्यों में उत्पन्न हुए, और वहां पर उन्होंने अंतर्मूर्त काल के बाद संक्लेश की पूर्ति करके भुजगार और अवस्थित विभक्तियों को किया। यानी 163 में कैसे कैसे लेना, वो तीन पल्ले की आयु है, और फिर वेदक समय दृष्टि रहे 32 और 32, वो ये उसी में ले लेना सारा। हाँ, 66 और वो 31, हाँ वो सब मिलके, और तीन पल्ले भी उसमें ले लेना। हाँ, वो तीन पल्ले साधिक में चला जाएगा। अब देखो इस प्रकार भुजगार और अवस्थित विभक्तियों का उत्कृष्ट अंतर साधिक 163 सागर प्राप्त होता है। अपदर कम्मं सियस्य अंतरम केवचिरम कालादोहोदि। मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीव का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। यानी अल्पतर किया, बाद में नहीं किया, हाँ फिर अल्पतर किया, तो जघन्य अंतरकाल, जघन्य ने एक समय, जघन्य अंतरकाल एक समय है, क्योंकि मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति को करने वाले जिस जीव ने एक समय के लिए भुजगार या अवस्थित स्थिति विभक्ति को किया, पुनः तीसरे समय यदि वह अल्पतर स्थिति विभक्ति को करता है, तो उसके अल्पतर स्थिति विभक्ति का एक समय अंतर पाया जाता है। उक्कसेन अंतमूर्तम्। उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अल्पतर स्थिति विभक्ति को करने वाले जिस जीव ने अंतर्मूर्त काल तक भुजगार और अवस्थित, वो भ हो गए, भुजगार और अवस्थित स्थिति विभक्तियों को किया, पुनः उसके अंतर्मूर्त काल के बाद अल्पतर स्थिति विभक्ति के करने पर मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का अंतरकाल अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। यानी उसने पहले जगन्य था, अल्पतर किया था, फिर अधिक बांधा, तो एक समय के लिए भुजगार हुआ, फिर उतना का उतना बंद किया तो अवस्थित रहा, फिर बाद में फिर घट गया, तो वो अंतर्मूर्त प्राप्त हो जाएगा। ये आगे का सूत्र और उसका अर्थ कल पढ़ेंगे अभी हम, ये बड़ा होगा ना। एक्चुअली उच्चारण है बाद में, एक सूत्र पढ़ते हैं। शेषाणम पि नेदव्यम, इसी प्रकार शेष प्रकृतियों का भी अंतरकाल जानना चाहिए। जिस प्रकार मिथ्यात्व का अंतरकाल कहा, उसी प्रकार शेष प्रकृतियों का भी जानना चाहिए। इस प्रकार चूर्णी सूत्र के कर्ता यति वृषभ आचार्य के द्वारा सूचित हुए अर्थ का उच्चारणा के आश्रय से कथन करते हैं। यहाँ से कले लेंगे कर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा बेन।